राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम
राधे श्याम
जन सुखदायक प्रण सागर के तट पर खड़े हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे सुर नायक, हे देवताओं के नायक, हे संसार के सभी जीवों को सुख देने वाले, हे शरणागत वत्सल, हम सब आपकी शरण में आए हैं। लक्ष्मी जी के प्रति, लक्ष्मी जी के प्रिय प्राण प्रिय अद्भुत कर्म करने वाले आपका मर्म कोई जान नहीं सकता, परंतु फिर भी हम आपकी शरण में आए हैं क्योंकि आप सहज कृपालु हो, आप दिनों के दयालु हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। जो कोई विनाश नहीं कर सकता है, आप घट घट में व्याप्त हो और आप परम आनंदमय हो, कृपया करके आप हमें दर्शन दें। जय जय अविनाशी सब घट व्यापी व्यापक
सबसे सुंदर हो,
आप माया से रहित हो, माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ऐसे प्रभु कृपया करके आप हमें दर्शन दीजिए।
अभी हो गीतम चरण पुनीतम माया
सचिदानंदा
राधे श्याम
आप ही संसार की माया को रचने वाले हो, आपके द्वारा ही ये जगत बना है, तो इस जगत में जो दुख है आप ही दूर कीजिए। हे सच्चिदानंद मई, आप ही गुणगान गाने के लिए योग्य हो, आप ज्ञान करने के लिए श्रेष्ठ हो, हम आपकी शरण में आए। जय ही सृष्टि भक्तों की चिंता का हरण करने वाले हैं। हम आपके भक्त हैं, हम आपके शरण में आए हैं, कृपया करके आप हमारा दुख दूर कीजिए।
मन बचतनवानी चारी सयानी शरण
आपका गुणगान करती हैं, आपके अनंत गुण हैं, आपके मर्म को कोई नहीं जान सकता है, परंतु हम इतना जानते हैं कि आप दिनों के प्यारे हो, दिन दुखियों का दुख दूर करने वाले हो। बड़े बड़े वेदों में आपको गाया गया है, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं।
जय ही दीन यारे वेद
राधे श्याम 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 राधे श्याम
प्रकट नहीं होते हैं। जब तक भगवान तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक गाएंगे नहीं और नाचेंगे नहीं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
गीरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच गां पोरुषिं मे शृणुतामरा पुनः विधेर्यतामाशुततेवमाचिरम्। देवताओं के कीर्तन से शिर सागर के तट पर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए हैं। अद्भुत स्वरूप भगवान श्री विष्णु का है। गिरम समाधो गगने समीरिताम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए हैं और अपने मुख से कुछ शब्द बोले, उनकी वाणी कैसी थी? गिरम समाधो, उनकी गिरा उनकी वाणी मेघ के समान थी और उस मेघ के समान वाणी से गगने समीरिताम सारे गगन में पूरे आकाश में उनकी आवाज गूंजने लगी। वहां इको बढ़ाना नहीं पड़ता है, गूंजने लगी वाणी सभी जगह पर और भगवान की वाणी अद्भुत। निशम्य वेदा त्रिदशान वाच त्रिदशा, दश का अर्थ होता है करोड़, त्रि का अर्थ होता है तीस। 30 करोड़ देवताओं को उवाचह भगवान कहने लगे। तो सबसे पहले तो एक संशय आपके मन में यदि ध्यान से सुन रहे हो तो होता होगा कि त्रिदशा यहां पर क्यों कहा गया। सुखदेव गोस्वामी 30 करोड़ देवता क्यों कहते हैं? हमने तो 33 करोड़ सुना है। देवता 33 करोड़ हैं परंतु सुखदेव गोस्वामी त्रिदशा कह रहे हैं क्योंकि पहले के जमाने में भी राउंड फिगर चलता था। अब क्या 33 और 34 गिनाने बैठे? त्रिदशा राउंड फिगर 30 करोड़। आचार्यगण अपनी टीका में लिखते हैं शॉर्टकट में राउंड फिगर बता दिया, परंतु इससे हमें 33 करोड़ समझना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं सुखदेव गोस्वामी झूठ बोले हैं, ऐसा नहीं है। त्रिदशा 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान श्री विष्णु कहने लगे। क्या कहे? उवाच ह इति आश्चर्य। उवाच कह दिया होता तो चल जाता, ह शब्द क्यों जोड़ दिया? ह का कोई अर्थ ही नहीं है। बताइए ह का क्या अर्थ है इस श्लोक में? तो आचार्यगण कहते हैं आश्चर्य भगवान कहने लगे। बहुत कम लोगों को कहते हैं भगवान, बहुत सुंदर कहने लगे। क्या कहते हैं? गाम पौरुषिम में शुणुता मरापुन विधीयता मासु तथैव माचिरम। मैं बोलने जा रहा हूं, आप अब शांति रखिए, क्योंकि हुआ था श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, या मुझे याद नहीं है, अष्टम स्कंद में लिखते हैं, भगवान जब प्रकट हुए तो सभी देवता या 33 करोड़ देवी देवता आपस में बात करने लगे, अरे कितने सुंदर है ये, क्या अद्भुत रूप है, क्या चकाचक दिखते हैं। अपनी अपनी भाषा में सब लोग बोलते होंगे क्या सुंदरता है भगवान की। तो इस प्रकार सब लोग आपस में बात करने लगे, भगवान तो ऐसे ही देखते रह गए। भगवान ने कहा सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वह सुनो, ये चर्चा बाद में जाकर प्रवचनों में करना तेषाम आविर्भूत राजन सहस्त्रा अर्क द्युति, अष्टम स्कंद के छठे अध्याय में आया है। सहस्त्र अर्क, सहस्त्र माने हजारों हजारों सूर्य के समान भगवान के शरीर की कांति है, आभा है। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर देवताओं को कहने लगे मां चिरम, मैं जो सुन रहा हूं सुनो, मां चिरम देर मत करो, चीर कारता है देर करना, मां चिरम पूरे पुंसाव ध्रुतो धरा जोरो। अब तुम क्या मुझे कहोगे, मुझे सब कुछ पता है, टाइम वेस्ट मत करो। देवता लोग बोलने लगे हम यहां इसलिए आए हैं, ये हैं, सब लोग अच्छे होने लगे। नहीं नहीं, मुझे सब कुछ पता है, पूरे व पुंसा व ध्रुतो धरा ज्वरो, ये धरा ये पृथ्वी का जो ज्वर है, जो दुख है, मैं पहले से ही जानता हूं। और मैं नहीं, भवद भी अंशेर्य शुप जन्यताम सायाव दुर्त्या भरमेश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या शपयंश चरित भूवि। देखिए यहां पर इस कथा का एक अद्भुत मोड़ है, और प्राय संसार के लोग इस मोड़ पर मार खा जाते हैं, क्योंकि आप प्रभुपाद जी की संस्था से कथा सुन रहे हैं, इसलिए इस तत्व को आप ठीक से समझ पाओगे। भगवान विष्णु देखिए भूत भविष्य कौन से काल में कह रहे हैं, शीर सागर के तट पर खड़े हैं भगवान श्री विष्णु, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण करके बैठे हैं, और वे भगवान विष्णु देवताओं को क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी को कितना दुख है, ये सारी बात भगवान को पता है। तो क्या भगवान कोई तीसरे हैं? कुछ लोग देवताओं को भगवान मानते हैं, यहां विष्णु भगवान, तो विष्णु भी कह रहे हैं कि तुम जिस कारण से यहां पर आए हो ये सारी बात भगवान पहले से ही जानते हैं। कौन से भगवान? आचार्यों ने लिखा है गोलोक धाम में रहने वाले साक्षात बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण इस बात को पूरा एव पहले से ही ज्ञातवा जानते हैं, पहले से ही वे जानते हैं। तो अब तो बहुत बड़ा प्रश्न उठा, कृष्ण और विष्णु में भाई अंतर है? क्योंकि अब तक तो रामानंद सागर ये सागर टीवी में देखकर हम तो यही देखते हैं कि विष्णु से कृष्ण का जन्म हुआ। तो आज हम एक सिद्धांत की बात यहां पर सुनेंगे। वास्तव में विष्णु और कृष्ण अलग है, ये सभी देवी देवता विष्णु के पास खड़े हैं, और विष्णु कह रहे हैं कि ये सारी बात गोलोक धाम वृंदावन में रहने वाले कृष्ण जानते हैं। और अब तक तो मैं अवतार लेकर आता था, नरसिंह वामन वराह राम परशुराम, जितने भी अवतार हैं ये सारे अवतार विष्णु से हुए। क्या कहा देवी देवताओं को? अब तक तो मैं अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आता था, परंतु इस बार मैं नहीं आऊंगा, इस बार साक्षात भगवान कृष्ण बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही अपने गोलोक धाम से इस पृथ्वी पर आएंगे, और अपने निज स्वरूप से ही वे लीला करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? इसका अर्थ यह है विष्णु अलग है, कृष्ण अलग है। वैसे कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, परंतु तत्व से कृष्ण और विष्णु में बहुत अंतर है। यह अंतर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि वास्तव में साक्षात भगवान जिसका निज स्वरूप यदि कोई है तो वह कृष्ण। भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा है? कृष्ण, द्विभुज और हाथ में बंसरी, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। फिर इस कृष्ण से बलदेव जी प्रकट होते हैं। बलदेव जी से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध प्रकट होते हैं और उनमें फिर चार संकर्षण, 12 संकर्षण में से महाविष्णु प्रकट होते हैं। देखिए, महाविष्णु संकर्षण से प्रकट हुए, संकर्षण बलदेव जी से और बलदेव जी कृष्ण से। यद्यपि ये सब कृष्ण से ही प्रकट होते हैं परंतु तत्व की दृष्टि से दोनों अलग हैं। महाविष्णु शंकरसन से महाविष्णु प्रकट हुए, महाविष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं और गर्भोदकशायी विष्णु से शिरोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं और ये सभी देवता इस शिरोदकशायी विष्णु के पास खड़े हैं। विष्णु भी तीन प्रकार के हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और शिरोदकशायी। ये तीन विष्णु के क्या काम है ये सब हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये बहुत तात्विक और मार्मिक बात है। परंतु विष्णु जो है अवतार तत्व है, बलदेव जी स्वरूप तत्व है और कृष्ण ईश तत्व है। ईश एकमात्र कृष्ण है और बाकी उनके स्वरूप और उनके कला, उनके अवतार हैं। तो जो साक्षात भगवान है, वेदव्यास जी इस बात को स्वीकार करते हैं। एते चांस कला पुंस, ये जितने भी विष्णु, वामन, वरा, ये सब भगवान के अवतार है, कला है, स्वरूप है, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है साक्षात भगवान है। देखिए सिद्धांत को समझिए, अपने बुद्धि में बिठाइए। भगवान का वास्तविक स्वरूप द्विभुज और पीतांबर और बंसरी और मोर पृष्ठ धारण किए हुए कहां रहते हैं? इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत में भी गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर गोविंद के नाम से वहां विख्यात है। तो यह है साक्षात भगवान। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये शिरोदकशायी विष्णु कहते हैं कि यह सारी बात कृष्ण को पता है जो गोलोक धाम में, और अब तक तो मेरा अवतार होता था, मैं अवतार लेकर आता था, परंतु इस बार अवतार नहीं आएगा, साक्षात भगवान आएंगे। कितने सौभाग्य की बात है। जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसी कई सारी फैक्ट्रियां हो, और फैक्ट्री में यदि कुछ बिगड़ गया हो, कुछ काम पड़ा हो, तो वे अपने आदमी को भेज देता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है। परंतु यदि कोई बड़ा काम, बड़ा प्रॉब्लम हो गया हो, तो वे खुद चल कर जाता है। तो ऐसे संसार में छोटा मोटा भार दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। परंतु जब भक्तों को आनंद देने की बात आती है तब भगवान स्वयं उतरते हैं, स्वयं अपने गोलोक के बिजी शेड्यूल से समय निकालकर इस पृथ्वी पर आते हैं और लीला करते हैं। तीस बार साक्षात कृष्ण इस संसार में प्रकट हुए, उपस्थित होने वाले हैं। भगवान विष्णु ने कहा, इसलिए कहा, ध्यान से सुनो, आपस में कानाफूसी मत करो, आप लोग भी वहां कोने में, नहीं तो इस बात को समझ नहीं पाओगे। तो इस प्रकार कहा कि कृष्ण को पता है और बहुत जल्द गोलोक धाम से भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वरूप से इस संसार में जन्म लेने वाले हैं। इतना कहे कि भगवान विष्णु वापस जा रहे थे, देवताओं ने कहा रुको रुको, बस इतना कहे कि चल दोगे, कहां जन्म लेंगे? कोई अता पता ठिकाना हम कैसे समझेंगे? और अता पता ठिकाना नहीं बताओगे तो फिर संसार के बापू और बाबा को भगवान मानने लगेंगे। यही है कृष्ण का अवतार, यही बाबा और यही बापू। कुछ बताइए, कुछ बोलिए, तब हम पहचाने कि ये भगवान है। देखिए शास्त्र में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कौन भगवान है कौन मनुष्य। जब देवताओं ने पूछा कि वे भगवान कहां जन्म लेंगे, तब भगवान कहते हैं, देवता ने पूछा कि कृष्ण कहां जन्म लेंगे, तब शिरोधक्षायी विष्णु कहते हैं वासुदेव गृहे साक्षात। श्लोक में आया है 23वें श्लोक में, वासुदेव गृहे साक्षात, शूरसेन के पुत्र वासुदेव के घर पर उनका जन्म होगा। भगवान पुरुषपुर, और फिर भी और एक बार सुन लो, मैं नहीं आऊंगा, भगवान पुरुष पर परम पुरुष भगवान कृष्ण श्याम सुंदर साक्षात रूप में आएंगे, मैं नहीं। बार बार अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि देवताओं भी कभी कभी भूल खा जाते हैं। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर जनश जन जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतु सुर स्त्रिय, सबको आनंद देने के लिए प्रेम करने के लिए वहां पर आएंगे, परंतु उनकी लीला में सहायता करने के लिए देवता और अप्सराओं की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चोरी करनी होगी, मक्खन चोरी तो अकेले तो होगा नहीं, उनके लिए सुदाम श्रीदाम मनसुखा इत्यादि ये सब सखे की आवश्यकता होगी। इसके लिए हे देवताओं, तुम सब लोग अपने अपने अंश से मथुरा और गोकुल में जन्म ले लो, वहां मिलेंगे, और अपनी पत्नियों को भी कहो कि वहां आ जाए। वासुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वराट, और केवल कृष्ण ही नहीं आएंगे, उनके प्रथम एक्सपांशन प्रथम स्वरूप बलदेव जी जो सहस्त्र वदन सहस्त्र फेण वाले स्वराट है, ऐसे बलदेव जी का भी प्राकट्य होगा। और इस बार अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया, और इस बार कृष्ण से पहले कृष्ण के अग्रज बनकर इस संसार में अवतीर्ण होगी। पिछली लीला में तो लक्ष्मण बनकर छोटे भाई बनकर आए, परंतु उस लीला में लक्ष्मण ने कान पकड़ ली और अपने भाई को एक जीवन में एक चीज मांगी, प्रभु मैं आप आज तक जीवन में कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं। राम ने कहा बोलो क्या चाहिए, प्रभु मैं जब जब आपका अवतार होता है तब तक मैं आपके साथ ही रहता हूं। भगवान ने कहा तो आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं कि जब भी हमारा अवतार हो तो मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा, क्योंकि छोटे भाई बनने में बहुत लॉस है। अपने लिए नहीं कह रहे हैं, मैंने कहा वन में नहीं जाना है फिर भी 14 साल के लिए चले, और हर बार मुझे आप बात आपका मानना पड़ा और आप मेरी बात को टालते गए, सत्य है। लखनलाल जब कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र को वनवास दिया, दशरथ जी से 2 वर मांगे, 1 वर भरत को गादी राज आसन अवधपुरी का राजा, और दूसरा वर मांगते ही राजा दशरथ भूमि पर गिर गए, पपात भूमो शिरसा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वरीस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वरीस राम वनवासी। 14 साल के लिए भगवान को राम वन में भेजा। लक्ष्मण को जब पता चला, धनुष बाण हाथ में है, और तुरंत कहने लगे उस नपुंसक कहां है, दशरथ मार डालूंगा आज अपने पिता को। राम प्रभु आपको जंगल में नहीं जाना है, और किसने वनवास दिया है, दशरथ ने दिया है, पिता कहना बंद, उस दशरथ ने वनवास दिया है, आज दशरथ गया। भगवान श्री रामचंद्र लखनलाल को बहुत डांटे, ऐसा कह रहे हो अपने पिता को, आज की बात मुझे भाई मत कहना, तुम नहीं जानते हो हमारे पिता कितने बड़े धर्म संकट में फंसे हैं। एक और उनका वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए, और एक और पुत्र के प्रति प्रेम है। इतने धर्म संकट में फंसे और पिता को गाली दे रहे हो, आज के बाद भाई मत कहना। भगवान बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, परंतु लखनलाल ने यही कहा कि प्रभु छोटा नहीं बनना है, बड़ा बनना है। बड़ा बनूंगा तो मैं जो कहूंगा तुम मेरी बात मानोगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, नेक्स्ट लीला में, द्वापर युग की लीला में तुम बड़े बनना, मैं छोटा बनूंगा। इसलिए भगवान विष्णु यहाँ पर कहते हैं अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। तो क्या बलदेव जी बड़े बनेंगे भगवान को डांटने के लिए? नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने कहा हरे भगवान कृष्ण को प्रिय प्रिय करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बड़े बनेंगे। और भगवान विष्णु ने थोड़ा इंडिकेशन दे दिया कि वे सबसे पहले देवकी के गर्भ में आएंगे और फिर रोहिणी के गर्भ से, और बाद में जन्म होगा। आप लोग टेंशन मत लेना क्योंकि आप चिंतित हो जाओगे। तब देवताओं ने कहा ये कैसे हो सकता है, ऐसा डॉक्टर तो हमारे स्वर्ग में भी नहीं है कि एक लड़के को दो के गर्भ में। ये अश्विनी कुमार जो सबसे बेस्ट हमारे स्वर्ग में डॉक्टर है, ये भी नहीं जानते दूसरे के गर्भ में, ये दो माँ के गर्भ में एक ही बालक को घुमाना ये कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा डरो मत, सुनो ध्यान से, विष्णुर माया भगवती, विष्णु की माया को नहीं जानते हो तुम, मेरी माया को नहीं जानते हो। यया सम्मोहितम जगत, जिससे सारा जगत मोहित होता है। भगवान की माया अद्भुत है, सारा जगत उसकी माया से मोहित होता है। आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की दो माया, जैसे मैंने आपको कहा महामाया योग माया, तो भगवान योग माया के द्वारा यह काम कराएंगे, इतना कह रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि इति आदिश्य अमर गणान। इस प्रकार अमर गण देवता गणों को आदेश देकर प्रजापति पतिर विभु भगवान अप्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी आश्वास्य च महिम गर्भी, और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को जो गाय का रूप बनाकर आई थी उसे आश्वासन दिया कि देवी डरो मत, अब तो आपके लिए सौभाग्य की बात है, साक्षात भगवान आने वाले हैं, आपके प्राण प्रिय पतिदेव आने वाले हैं, डरो मत, भगवान बहुत जल्द आएंगे। देवताओं को कहा कि आप भी मत डरो, आप सब लोग देखिए ब्रह्मा जी, अब देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत आ रहा है। ब्रह्मा जी ये सभी देवताओं को लेकर गए हैं, पृथ्वी को लेकर गए हैं, और ब्रह्मा जी ने भगवान से सब सुन लिया। अब देखिए ब्रह्मा जी पृथ्वी को कहा आप डरो मत, आप अपने स्थान पर चली जाओ, आप साधना करो सेवा करो, आपके प्रभु बहुत जल्दी आ जाएंगे। पृथ्वी चली गई, 33 करोड़ खड़े थे, कहा कि हे देवताओं आप डरो मत, आप सब लोग अपने अपने अंश से भगवान की सेवा करने लगो, सेवा करते रहो, भगवान बहुत जल्द आएंगे। इतना कह के पृथ्वी को सेवा में लगाया, देवताओं को सेवा में लगाया। और सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर हिंट दे रहे हैं कि आश्वास्य च महिम गर्भी, ये सब को सेवा में लगाया, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्वधाम परमम ययो, अपने घर पे जाकर सो गए। देखिए बहुत सुंदर बात आ रही है, आश्वान सम महिम गर्भी, सभी देवताओं पृथ्वी को सेवा में लगाया, सेवा करो बहुत अच्छी अच्छा काम है सेवा करना, और खुद स्वधाम अपने धाम में जाकर ये यो जाकर सो गए। इस संसार में कुछ भक्त भक्ति में थोड़े आगे बढ़ जाते हैं तो केवल उपदेश देना ही जानते हैं, ये करो ये मत करो, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, सेवा करो, सेवा का बहुत फल मिलता है, बहुत लाभ होता है, और खुद घर पे जाकर बैठ जाता है। नए लोग बेचारे बहुत सेवा करते हैं भक्ति में, जो शुरू शुरू में आते हैं बहुत लगे रहते हैं, और ये महाशय आराम करते हैं। ये हालत है आज के भक्तों की। देखिए यहां पर शास्त्र जगह जगह पर हमें हिंट दे रहा है, स्वधाम परमम ययो, हमें हमारे घर पर जाकर नहीं बैठना चाहिए, मंदिर में बैठना चाहिए, स्वधाम अपने घर पर। और इसीलिए एक आचार्य अपने टीका में बहुत सुंदर लिखते हैं, इसीलिए देखिए सभी देवताओं को सेवा में लगा दिया, सभी देवता सेवा में लगे, पृथ्वी सेवा में लगे, और देवता सेवा में लगे तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा होगा कि जरा ये लोग का सेवा ध्यान रखना, लीडर बनना तू भी। तो इंद्र लीडर बना। ब्रह्मा और इंद्र ये दोनों सेवा नहीं कर रहे थे, करा रहे थे। ये लीडरों की बहुत फजीहत होती है, लीडर लोग बहुत परेशान होते हैं, लीडर बनना बहुत खतरा है, दास बनने में ही आनंद है। हमारा स्वरूप है दास, दासानुदास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हमारा स्वरूप है दास बनना और हम चाहते हैं लीडर बने। अब दास यदि लीडर बन जाए तो वो भजन नहीं कर पाएगा, सत्य है, हमने देखा है। दास बनकर भजन करने में जो आनंद है वो लीडर बनकर नहीं है। और दास बनकर भगवान जितना जल्दी मिलेंगे उतना लीडर बनकर नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन में यदि कोई हमें लीडर बनाता भी है तो हृदय में दुख होना चाहिए, अरे क्या करें। ऐसा नहीं कि गुरु की आज्ञा का पालन न करें, करें, परंतु हृदय में ग्लानि होनी चाहिए कि गुरु ने आज्ञा दे दी है, लीडर बनना पड़ा तो ठीक है बने हैं। यदि यह भाव रहा तो कोई बात नहीं, परंतु कुछ लोग तो चाहते हैं हम आगे रहे, हम दिखने चाहिए सबको, हम कंट्रोल करेंगे, हम ऑर्डर करेंगे। ये तो गए, ये दो लोग हैं यहां पर, ब्रह्मा और इंद्र। जैसे यहां श्लोक में आपने देखा कि ब्रह्मा जी ने इंद्र को कह दिया जरा सेवा करवा लेना ये सबसे। इंद्र ने कहा जी सेवा कराने में तो सब लोग मास्टर होते हैं, करने में बहुत पीछे होते हैं। तो इंद्र सेवा कराता होगा, मंदिर साफ कराना, ये करा, चलो ये करो ये करो, आपका यहां है आपका वहां है। और ये इंद्र जो बड़े थे महाशय, ये तो घर पे चले गए। और ये दोनों भगवान की सेवा नहीं, लीडरशिप किए, इसलिए दोनों भगवान को जानने में धोखा खा गए। क्यों प्रभु है? ये दोनों आगे चलकर आप देखेंगे, ब्रह्मा जी जब ब्रज वृंदावन में आएंगे भगवान कृष्ण को देखने के लिए, तब धोखा खा जाए, ये कृष्ण हो ही नहीं सकते। और ये इंद्र जिसको लीडर बनाया था ये भी कृष्ण को नहीं पहचान पाया, और सांबर तक मेघ बरसाया, भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। ध्यान रहे, सतर्क रहना चाहिए। भजन बहुत अच्छी चीज है, साधना बहुत अच्छी चीज है, परंतु भजन और साधना दास बनकर करना चाहिए। लीडर बनकर, स्वामी बनकर भजन कभी नहीं होगा, भजन दास बनकर होता है। और यदि मानो किसी ऑथोरिटी ने हमें स्वामी बना भी दिया है तो बाहर से स्वामी का भाव, परंतु हृदय से तो दास का भाव होना चाहिए, तब जाकर भगवान को जान पाएंगे। नहीं तो ब्रह्मा जी और इंद्र धोखा खा गए तो हम कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी चीज है, हम तो कीड़े मकोड़े के समान है उनके सामने, क्या भगवान को जानेंगे। ब्रह्मा होते हुए भी याद कीजिए प्रसिद्ध लीला, आज से 5000 वर्ष पूर्व हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम हरे राम राम राम।
भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन अपने सखाओं के साथ गैया चराने के लिए जाते थे। एक समय की बात, सखाओं के साथ गैया चराने के लिए, गैया चराना तो बहाना था, केवल खाते पीते खेलते थे ऐश करते थे, गैया तो अपने आप चरती रहती थी। और जब घर पर जाना होता तो गैया को बुलाना भी नहीं पड़ रहा था, बंसरी पे गैया का नाम लेकर बंसरी बजाते, 2 मिनट में सारी गैया एकत्रित होकर चलने लगते थे। तो भगवान का अद्भुत यह लीला, प्रतिदिन अपने सखाओं के साथ जाते थे। एक दिन की बात, अपने मित्रों के साथ आज भी वह स्थान वृंदावन में भोजन स्थली पर भोजन करने के लिए बैठे, भगवान श्री कृष्ण बीच में और सारे गोप ग्वाल सखा आजू बाजू में बैठे हैं, और सब लोग अपने अपने घर से कुछ मक्खन कुछ रोटी कोई छाछ कोई सब्जी कोई अचार, सब लोग अलग अलग लाए थे। कृष्ण ने अपना खोला, सबने अपना अपना भोजन खोला और कृष्ण खा रहे थे। 2-3 बच्चे कहते थे कृष्ण जरा देखो हमारी माँ ने बहुत अच्छा बनाया है, तो उसका जूठन कृष्ण खा लेते थे। कभी कभी कृष्ण अपना जूठन दूसरों को खिलाते थे, और कुछ बाल बाल उसके साथ इतनी मजाक मस्ती किया करते थे, कृष्ण ये देखो मेरी माँ ने ये बहुत सुंदर आचार भेजा है। तो आचार जैसे ही कृष्ण खाने जाते तो वैसे उसके मुंह से ले लेते। तो इस प्रकार ये लीला चल रही थी। और उस समय ब्रह्मा जी को हुआ कि हम लोग गए थे क्षीर सागर के तट पर और कहा था कि कृष्ण आने वाले हैं, चलो दर्शन करके आए। अब रेगुलर मंदिर में आए होते, प्रवचन सुना होता तो समझ में आ गया होता ये कृष्ण भगवान है, परंतु ये स्वधाम परमम ये जो जाकर सो गए, अब कैसे पता भी चले कौन कृष्ण है। आए नीचे उतरे ब्रज वृंदावन में आकर देखा, सब लोग उसे कृष्ण कृष्ण कह रहे थे, ये कृष्ण। ब्रह्मा जी दूर से ही देखने लगे कि ये भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसके इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं, परम पुरुष पर ब्रह्म, ये दूसरों का जूठन खा रहा है और अपना जूठन दूसरों को खिला रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। जिस संसार में लोग कहते हैं ना कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकते, लेकिन कुछ सेवा साधना करेंगे तो जानेंगे ना, सोते रहेंगे तो नहीं पता चलेगा, ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो भगवान यदि भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगा, भगवान जो पूरे संसार की परीक्षा लेता है उनकी परीक्षा लेने चले। क्या परीक्षा ली? सबसे पहले ब्रह्मा जी, ये सब कृष्ण सखा इत्यादि भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी उसके बछड़े को लेकर चुरा कर चले गए, बछड़े को चुरा कर चले गए और अपने ब्रह्मलोक में रखकर आए। अब ब्रह्मलोक में रखकर आए तब तक तो एक साल बीत गए। यहां पर कृष्ण देखा कि बछड़े नहीं है, गोप ग्वाल सखा बोलने लगे बछड़े नहीं है। कृष्ण ने कहा आप सब भोजन करो, जरा मैं देख कर आता हूं। कृष्ण गए, जाकर देखा तो वास्तव में बछड़े नहीं थे। कहा कि ये काम तो मेरे लड़के का ही हो सकता है, ये ब्रह्मा उनका लड़का ही तो है, उनके नाभि से प्रकट हुआ है। भगवान ने तुरंत अपनी शरीर का एक्सपांशन करके उन्होंने जितने बछड़े थे जैसे थे वैसे प्रकट कर दिए और लेकर आए, टेंशन मत लो लेकर आया हूं, वहां घूमने चले गए थे हरी हरी घास खाने। आए ब्रह्मा जी आकर देखे तो बछड़े वही थे। ब्रह्मा जी ने सोचा बछड़े तो चलो और 9 लाख उनमें से कुछ ट्रांसफर कर दिया होगा, ये गोप ग्वाल सखा को चुरा कर लेकर जाता हूं। कृष्ण कुछ घूम रहे थे तो गोप ग्वाल सखा को चुरा कर लेकर चले गए। वैसे बछड़े और सखा दोनों को चुरा कर लेकर गए, कृष्ण अकेले हो गए। अब कृष्ण ने सोचा घर पर जाकर क्या कहूंगा, ये सब किडनैप हो गए, ये लेकर चले गए ब्रह्मा जी, और मैं घर पे जाकर कहूंगा। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाकर वापस आए तब तक तो एक साल बीत जाएगा। तब कृष्ण ने अपने शरीर से वैसे ही बछड़े और वैसे ही गोप ग्वाल सखा को प्रकट कर दिया और सब लोग शाम को घर पर चले गए। ब्रज वृंदावन के संत बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस दिन से वे बछड़े और वे कृष्ण के रूप के गोप ग्वाल सखा घर पर आए हैं, वो दिन से उनके माता पिता कहने लगे, रे तू इतना सुंदर क्यों लगता है, इतना काला था, तेरे सामने देखने का मन भी नहीं करता था, इतना अच्छा क्यों लगता है। पता नहीं ना कृष्ण का अंश है, वो साक्षात कृष्ण वहां पर आए हैं, इतना प्रेम। और कहते ये गाय इतना दूध देने क्यों लगी है, कृष्ण ही गाय बनकर आए हैं। परंतु देखिए कुछ लोग ऐसा आरोप करते हैं कि कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी, परंतु सभी मंदिर में कृष्ण के साथ राधा को क्यों रखा जाता है, क्योंकि राधा का विवाह तो अयन घोष अभिमन्यु के साथ हुआ था। लेकिन यहां पर क्योंकि ये प्रसंग आया है इसलिए आपको कह दूं कि उस एक साल ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए तब तक तो एक साल बीत गया, और एक साल के बीच में ये प्रतिदिन कृष्ण और बछड़े इत्यादि आते थे, लीला करते थे। परंतु उस समय गर्गाचार्य जी वहां ब्रज वृंदावन में आए और कहा कि ये समय जो है अपनी अपनी लड़कियों का विवाह करने के लिए योग्य समय है, यदि अपनी लड़कियों के जीवन में सुख देखना चाहते हो तो हमारे इसी वृंदावन में कोई अच्छे ग्वाले को ढूंढकर विवाह करा दो। तो उस ब्रज वृंदावन में जितनी भी गोपियां थी ये सब का विवाह उस वृंदावन के सभी गोप ग्वाल सखाओं के साथ करा दिया। अब तत्व से देखा जाए तो वास्तव में कृष्ण के साथ ही गोपियों का विवाह हो गया था, उसमें राधा का विवाह भी कृष्ण के साथ हो गया। तो ये तो एक अलग प्रसंग है, परंतु एक साल के बाद ब्रह्मा जी जब बछड़े और गोप ग्वाल को छोड़कर आए, आकर देखा तो वैसे ही कृष्ण बछड़े और गोप ग्वाल सखा है, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। और अब बुद्धि आई, कि नहीं नहीं मैं भी ये लोगों के साथ थोड़ी सेवा किया होता तो अच्छा था। स्वधाम परमम ययो, अपने धाम में जाकर सोने के अलावा यहाँ पर ये लोग के साथ रहा होता तो अच्छा था, सेवा किया होता, पहचान नहीं पाया। लेकिन अब क्या करे, अपराध हो गया, भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी का अपराध हो गया, और बहुत बड़ा अपराध। भगवान का कोई भी अपराध करो, भगवान को गाली दे दो, कृष्ण को बुरा नहीं लगेगा, परंतु कृष्ण को उनसे भक्त से अलग कर दो, बहुत बुरा लगता है। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। भागवत में वर्णन है, नो मीयते ब्रव पुषेत इडंबराय गुंजा वसन परिपिच्छ लसन मुखाय वन्यास्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रीये पशु पंकजे मृदुशाय। बहुत सुंदर प्रार्थना ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, इस संसार में एक बालक माँ की गोद में रहता है, कभी कभी वह बालक उस माँ का दूध पीता है और कभी कभी अपनी ही दूध पीने वाली माँ को लात से मार देता है, तो क्या माँ उसे छोड़ देती है, पटक देती है? फिर भी माँ उसे नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार प्रभु, हम आपकी संतान हैं, हम आपके पुत्र हैं, कभी कभी हमसे भूल हो जाए, अपराध भी हो जाए, तो हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से भागवत में 20 श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान ने उनके सामने देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि भजन साधना में बहुत पीछे थे ब्रह्मा जी। ये तो क्या हो गए, भक्ति करके ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, कितने भी बड़े कुल में जन्म क्यों न हो, कितना भी बड़ी विद्या प्राप्त क्यों न किए हो, कितने बड़े पद पर भी क्यों न हो, भगवान केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं, भक्त्या माम। इसलिए हम सब साधकों को सतर्क रहना चाहिए कि हमें हृदय में दास्य भाव होना चाहिए, और दास्य भाव प्रत्येक रसों में प्रदान होता है। दास्य भाव रखकर भगवान की सेवा और भक्ति में लगना चाहिए, लीडर नहीं बन जाना चाहिए। प्रायः एक रोग है, वास्तव में लीडर बनना रोग है। जिस जो व्यक्ति इस रोग से बच गया, मैं तो देख रहा हूं वो भगवान को प्राप्त कर लिया। और कितना भी बड़ा और गुणवान व्यक्ति हो, लीडर बनने का रोग आ गया है, क्योंकि भगवान के धाम में लीडर के लिए कोई एंट्री नहीं है, दास को ही वहां पर एंट्री है। ब्रज वृंदावन की एक कथा, एक बार भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी मोहित हो गई और आई क्षीर सागर से उतरकर ब्रज वृंदावन में, वृंदावन की गली में खड़ी रही, पूछा कृष्ण कहाँ मिलेंगे? कृष्ण के पास क्यों जाना है, उसको प्राप्त करना है, उसके साथ लीला करनी है। तब ब्रज वृंदावन की गोपियों ने, गोपों ने कहा कि जब तक राधा रानी के चरणों की दास दासी नहीं बनोगी, जब हृदय में दास भाव नहीं आएगा, तब तक कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा मैं क्यों किसी का दास बनूं? अरे लक्ष्मी जी कह सकती है, क्योंकि वो लक्ष्मी को छोड़ दीजिए, उस लक्ष्मी का थोड़ा कृपा कटाक्ष किसी पर हो जाए, थोड़ा सा धन जेब में आ जाता है, तो व्यक्ति पायजामे से बाहर हो जाता है, जमीन से दो कदम ऊपर चलने लगता है। थोड़ी सी उस लक्ष्मी जी की थोड़ी सी कृपा से व्यक्ति अभिमान में आ जाता है, साक्षात लक्ष्मी को कितना अभिमान होगा। कह दिया दासी तो बनूंगी नहीं, बोलो और क्या करना है? तो कह दिया बिना दासी बने भगवान नहीं मिलेंगे। लक्ष्मी ने कहा दासी नहीं बनूंगी और यहां खड़ी रहकर तपस्या करती हूं, क्यों भगवान नहीं मिलेंगे? उस दिन से लेकर लक्ष्मी आज तक बेल वन में खड़ी है, तपस्या कर रही है, परंतु कृष्ण उसे मिले नहीं है। क्यों? क्योंकि दास बनना नहीं चाहती है। जो दास बनना चाहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते तो दास नहीं, दास दासानुदास, साक्षात भगवान भक्त के रूप में आए तो पूछा गया आप कौन हो? भगवान ने कहा ना हम विप्रो न च नरपति, न तो मैं विप्र हूं, ब्राह्मण हूं, न राजा हूं, न यति हूं, न गृहस्थ हूं, तो कौन हो? गोपीर भर्तार पद कमलम यो दास दासानुदास, मैं तो गोपियों के दासों का दास हूं, सेवक हूं, नौकर हूं। ये भाव जब हृदय में होगा तब भगवान मिलेंगे, स्वामी का भाव से भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए महारानी कुंती कहती हैं कि वास्तव में इस संसार में भगवान की कृपा से जो गरीब बने हैं, जिसके पास धन बहुत कम है, वे लोग भगवान को जल्दी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका जन्म से ही हृदय में दास भाव होता है। और जो लोग धनी हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभि एद मान मदह कुमान, जो जन्म से ही बहुत करोड़पति है, अरबपति है, उच्च कुल में जन्म है, बहुत विद्या प्राप्त की है, वे तो कृष्ण आपको कभी याद नहीं करेंगे। दास भावना से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और दास बनकर कथा सुनने में, भागवत पढ़ने में, सेवा करने में, भक्ति करने में बहुत आनंद है। दास बनकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। स्वधाम परमम, ये यो बहुत विचार नहीं, इस पर बहुत मनन हो रहा है कि हमें लीडर बनकर ब्रह्मा जी की तरह सबको लगा दिया और हम ढीले हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके साथ, जो जितना, जिसके हृदय में जितनी दास्तान ज्यादा है, वह उतना बड़ा भक्त होगा। यह आध्यात्मिक जगत का नियम है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी की तरह इंद्र भी भगवान को समझने में धोखा खा गए। ये दोनों लीडर, ये दोनों स्वामी भगवान को नहीं समझ पाए, परंतु फिर अंत में भगवान की कृपा हुई और भगवान को वे समझे। परंतु सार इतना ही है, स्वधाम परमम ययो, हमें, हम चाहे भक्ति में एक साल से हो, दस साल से हो, या 16 साल तक रहेंगे, हृदय में भगवान और भक्तों के प्रति दास भावना रखनी, ठीक है। तो ब्रह्मा जी अपने धाम में गए हैं, पृथ्वी अपने जगह पर गई है, और देवतागण अपने अपने स्थान पर चले गए हैं, और ये सब लोग भगवान का अवतार साक्षात भगवान कब आएंगे, कब आएंगे, भगवान के आने की राह देख रहे हैं। जैसे एक पत्नी पतिव्रता नारी अपने परदेश गए हुए पति की राह देखती है, कब हमारे पति आएंगे, वैसे यह माता पृथ्वी भगवान की साक्षात पत्नी है, वसुंधरा जिसको कहा जाता है, अपने पति की राह देख रही है, कब आएंगे, कब आएंगे। देवता राह देख रहे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, पृथ्वी राह देख रही हैं, तो हम भी 5 बजे तक राह देखेंगे। और बाद में अब यह कथा सुखदेव को, यह कथा सब ऊपर हो रही थी क्षीर सागर में, सुखदेव गोस्वामी अब यह कथा नीचे उतारेंगे, अपना कैमरा पूरा नीचे घुमा देंगे, और बिल्कुल यह कैमरा को बिल्कुल जूम करके इस पृथ्वी में भारतवर्ष, और भारत में मथुरा, और मथुरा में उस जगह पर अपना कैमरा लेकर जाएंगे जहां पर मथुरा में एक घर पर विवाह हो रहा है, और वह विवाह और किसी का नहीं, वसुदेव और देवकी का विवाह शाम को 5:30 बजे होगा। देवकी और वसुदेव जी के विवाह में आइए और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, प्राकट्य की कथा श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे राम राम राम।